श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम विराट रूप। श्लोक क्रमांक 34। मेरे पीछे दोहराइए। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वां जहि मा व्यतिष्ठ युद्धस्व जेता शिरने सप्तान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यमपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वां जहि मा व्यतिष्ठ युद्धस्व जेता शिरने सप्नान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वां जहि मा व्यतिष्ठ युद्धस्व जेता शिरने सप्नान् धोराइए। शब्दार्थ द्रोणं च तथा द्रोण भीष्मं च भीष्म भी जयद्रथं च तथा जयद्रथ कर्णं कर्ण तथा और अन्यन अन्य अपि निश्चय ही योद्धवीरान् महान योद्धा मया मेरे द्वारा हतान् पहले ही मारे गए त्वं तुम जहि मारो मा मत वैतिष्ठ विचलित हो युद्धस्व लड़ो जेतासी जीतोगे रणे युद्ध में सप्तान सप्तान ओके शत्रुओं को अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो तुम केवल युद्ध करो युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को पराजित करोगे तात्पर्य प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्णा भावना अमृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती है और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं है मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने ओम ज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मयं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिविसे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनदास हरे कृष्ण सो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 11 विराट रूप किसका विराट रूप भगवान का भगवान कौन है कृष्ण है कोई डाउट है आपको डाउट होगा चलेगा मगर शास्त्र कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सचित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम मानो या ना मानो वही सबके कारण है सो जो भी लोग ऑफिस में काम करते हैं किसी के लिए काम करते हैं हर कोई बॉस तो नहीं हो सकता तो कोई कोई वर्कर है कोई सर्वेंट है तो किसी के अंडर काम करते हैं जो हमारा बॉस होता है इमीडिएट या डायरेक्ट सुप्रीम बॉस जो कंपनी का मालिक रहेगा तो हम जब काम करते हैं हमारी आदत रहती है थोड़ा ढीलापन देने की थोड़ा ढील देने की चलो थोड़ा आराम से करेंगे बाद में करेंगे थोड़ा सा स्लैकनेस बोलते हैं उसको थोड़ा ढीला देने का पोस्टपोन करना कामों को मगर जब बॉस होता है उसके प्रेजेंस में हम बहुत अच्छे से काम करते हैं एकदम कट टू कट कोई गलती नहीं करते हैं ध्यान देते हैं काम में और डिले तो बिल्कुल नहीं करते हैं तो वैसे ही हमारे जो पूरे क्रिएशन है उसमें बहुत सारे काम होते हैं कार्य होते हैं हम देखते हैं सूरज फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट सही टाइम पे उगता है लेट नहीं होता है कभी हम ऑफिस में लेट हो सकते हैं मगर सूरज कभी लेट नहीं होगा बारिश भी आती है डिपेंड करता है हमारे यज्ञ के ऊपर में फिर भी आती है ऐसा नहीं कि ऊपरी हवा में लटकती नीचे गिरती है तो वैसे ही ये पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे वर्कर्स है जिन्हें अधिकारी देवता कहा जाता है देवताएं कहे जाते हैं डेमिगॉड्स कहे जाते हैं और ये लोग किसी के भय से काम करते हैं और ये भागवत में बताया गया है कि कैसे काम करते हैं लॉर्ड कपिला कहते हैं, मद भयात वाति वातः अयम सूर्यया तपति मद भयात वर्षति इंद्रः दहति अग्नि मृत्यु चरति मद भयात। ये जो वायु है मेरे भय से देता है, वायु आपको हवा देता है, सूरज अपनी रोशनी देता है मेरे भय से, कृष्णा कहते हैं, कपिला देव कहते हैं, इंद्र बारिश गिराता है मेरे भय से, अग्नि जलती है मेरे भय से, मेरे भय से पूरा ये लोग काम करते हैं। सो जब अर्जुन ने जब ये विराट रूप देखा, अर्जुन ने वहां पे देवताओं को भी देखा था, ये सभी देवताओं को, इंद्र सूर्य वरुण यम यमराज इन सबको देखा था वहां पे, और ये लोग भी जब देख रहे थे विराट रूप को, अर्जुन जैसे ये लोग भी चौंक गए थे और देखा कितने भगवान ब्रह्मा जैसे ऑल परवेडिंग है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे उनका प्रेजेंस नहीं है, और उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे सर हाथ पैर और डेंजरस दांत भी देखे, और जब उन्होंने ये देखा फियरफुल फॉर्म डेथ का फॉर्म, तब अर्जुन तो घबरा ही गया। देवता क्या करने लगे, पाही 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 हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमें ये भय से बचाइए, चिल्लाना चालू कर दिए। ऋषि मुनि कहने लगे भाई हम सबका भला हो, प्लीज कृपा दीजिए, क्योंकि जब अर्जुन ये फॉर्म देखता है बहुत डर जाता है, पहले एस्टोनिशमेंट होता है और बाद में घबरा जाता है, फियर आ जाता है कि भाई ये कैसा फॉर्म है, और कहता है प्रसिद्ध देवा ईशा जगत निवास, कि हे देवा ईशा सबके देवता कि जितनों भी टॉप मोस्ट है, ईशा टॉप मोस्ट आप हो, जगत निवास आप सबके अबाउट हो, सबके रेस्टिंग प्लेस हो, प्लीज मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए कि ये जो डेथ जैसा फॉर्म है जिसको कहा गया है काल अनल, जो कि एक फायर ऑफ डेथ है, एक अग्नि है जिसमें मृत्यु होती है, और काल अनल ये फायर है जब ये जब निर्माण होता है इसका डिस्ट्रक्शन भी होता रहता है, तो ये वो फायर है जब डिस्ट्रक्शन होता है, तो उससे इसका कंपैरिजन किया गया है। तो ये कहते हैं कि प्लीज मुझे ये फॉर्म से डर लग रहा है, और मुझे ये बताओ कि ये फॉर्म का क्या कारण है। मगर अर्जुन सिर्फ फॉर्म ही नहीं देखता है ये डरावना, अर्जुन और भी कुछ देखता है, मगर वहां पे जाने से पहले हम थोड़ा रिवाइंड जाते हैं, बैकवर्ड जाते हैं, कहां पे, जहां पे कृष्णा कहते हैं स्टार्टिंग के ये अध्याय में 11.7 में, इह एकस्तम जगत कृत्स्नम पश्य अद्य स चराचरम मम देहा गुदाकेशा यच्चान्यत् दृष्टुम इच्छसि। ये जो मेरा देह है तुम जो देख रहे हो गुदाकेश है अर्जुन, इसमें तुम जो चाहो वो देख सकते हो, पास्ट फ्यूचर हर चीज देख सकते हो, कि इसमें सब कुछ है। तो अर्जुन तो पहले से व्याकुल था, क्या देखने के लिए, फ्यूचर देखने के लिए कि क्या होगा युद्ध में, और उसको सबसे बड़ा भय क्या था कि जब वो लड़ाई कर रहा था युद्ध में था, तो जब युद्ध में रहते हो तब अपोजिंग पार्टी को देखना चाहते कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है और इस स्ट्रांग का क्या होने वाला है। तो श्लोक नंबर 26 से लेकर 30 तक ये फ्यूचर दिखाया गया है जो अर्जुन देखना चाहता है, और क्या देखता है अर्जुन, श्लोक नंबर 26 में बताया गया है कि ये जो तीन है मेंबर भीष्म द्रोण और कर्ण, ये जो अग्नि है जो डेथ लाइक जो फेस है भगवान के मुंह में घुस रहे हैं, जाई जा रहे हैं, क्यों अर्जुन को इसका ही भय था ये तीनों का, कि ये तीन भीष्म पितामह कर्ण और द्रोणा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये गए तो पूरा दुर्योधन की सेना परास्त, और यही हुआ था कि ये दोनों जब चले गए थे दुर्योधन हरने लगा था, कि पूरा उसका युद्ध इन पे डिपेंड था। तो ये व्याकुल था अर्जुन देखने के लिए, और वही अर्जुन ने देखा कि तीनों उनके मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, और कैसे जाते हैं ये भी नहीं जाते हैं, बाकी अन्य सोल्जर्स भी जाते हैं, और इसका कंपैरिजन दिया गया है 28-29 श्लोक में, कि एक जाते हैं जैसे नदी की जो लहरें रहती है समुद्र में कैसे मिल जाती है घुस जाती है, और दूसरा जो कीड़े रहते हैं मौत जो कि अग्नि रहती है लाइट उसको आकर्षित हो जाते हैं उसमें जबरदस्ती घुस जाते हैं, ऐसे घुसते हैं। तो दो एनालॉजी दिया गया है, और इसका मतलब भी है, श्रील बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि जो नदी जैसे जाते हैं कि नदी का नेचुरल प्रभाव है, उधर से पानी आता है वापस वो समुद्र में आके मिल जाती है, नेचुरल प्रभाव है, ये सुपरफिशियल नहीं है, जबरदस्ती नहीं जाते हैं। मगर जो मौत है ये उसको पता है कि मेरी मृत्यु होगी, मगर फिर भी उसमें जाके घुस जाता है, और ये जो ऐसे जाते हैं उनके मुंह में मृत्यु के मुंह में, ये है असुर प्रवृत्ति के सोल्जर, क्योंकि दुर्योधन के साइड में अच्छे लोग भी थे जो कि धर्म का साथ में थे, मगर किसी कारणवश भगवान की जो मर्जी थी उसकी वजह से वो उनके साइड में थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अनेक, उनको पता था कि मैं किसके साइड में हूं। मगर जो बाकी असुर लोग थे जो कि ये मौत जैसे थे, जो कि फायर में जानबूझ के घुस रहे थे असुरी प्रवृत्ति की वजह से, उनको वैसा बताया गया है, जो कि थे कर्ण, इसको पता था कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी उनका साइड दिया। और कितने अनेक थे जयद्रथ, कितने असुर थे, और इनका विनाश वैसे ही होता है, वैसे ही मुंह में घुसते हैं। सो अर्जुन देख जाके घबरा जाता है और पूछता है कि 31 श्लोक में कि ये जो उग्र रूप है इसका क्या, ये क्या रूप है, ये इसका मतलब क्या है और इसका कारण क्या है, ये जानना चाहता है अर्जुन। और ये आगे बताया जाता है और कहते हैं वहां पे, या कि ये जो रूप है ये क्या है और इसका मिशन क्या है। तो जो ये रूप है उग्र रूप, ये है काल रूप, समय, टाइम, जो कि डिस्ट्रक्शन है, कि समय चेंजेस लाता है, काल इफेक्ट करता है, जैसे हमारे शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, यूथ से जवानी, जवानी से बुढ़ापा एंड मृत्यु, ये चेंजेस है, ये किसकी वजह से हो रहा है, काल की वजह से, समय की वजह से। समय नहीं होता तो चेंजेस नहीं होते हैं, तो समय मतलब चेंजेस, तो ये काल रूप है और ये डिस्ट्रक्शन करने आया है। कृष्णा कहते हैं किसका डिस्ट्रक्शन, सभी सैनिक जो ये जमा हुए है कुरुक्षेत्र की भूमि में, इन सबका विनाश होने वाला है सिवाय तुम पांडवों का, ये सबको मरना है। और आगे कहते हैं कृष्णा कि हे अर्जुन, तुम लड़ो या ना लड़ो, तुमने तो देख लिया है इन सबका विनाश होने वाला है, ये सब मरने वाले हैं, तुम ना चाह के भी ये लोग मरने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा प्लान है, तुम इन्हें बचा नहीं सकते। क्योंकि अर्जुन को लगता था पहले कि वो नहीं लड़ेगा तो उसके रिश्तेदार नहीं मरेंगे, वो खुशी शांति से रह सकते हैं, मगर नहीं, कृष्णा का पर्पस ही वो था इन सबको जमा करने का, उनको मारने का, तो डिसाइड हो चुका था अर्जुन लड़े या नहीं लड़े, अर्जुन के हाथ से नहीं तो किसी और तरीके से वो मरेंगे, मगर मरेंगे, गारंटी है, क्योंकि दैट मींस श्योरिटी, उसमें कोई लूपहोल नहीं है। अर्जुन निकालने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि एक कहानी है जो प्रभुपाद कहते हैं, स्कल्पचर जो बनाते हैं, जो ये मूर्तियां बनाते हैं, फॉर्म्स बनाते हैं, तो एक वैसा था स्कल्पचरर, सो वो अपना अच्छे से एकदम एक्सपर्ट था फॉर्म बनाने में, एकदम डिक्टो फॉर्म बनाता था। तो एक बार वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया कि भाई मेरे भविष्य में क्या लिखा है, तो जो ये था एस्ट्रोलॉजर उसको बताता है कि कुछ दिनों में तुम मरने वाले हो, और ये परेशान, अरे बाबा तुम्हें मरने वाला हूं, कितने सारे मेरे प्लान है, क्या होगा उसका। तो फिर वो जाता है और सोचता है कि यमराज को मैं चीट भी कर सकता हूं, तो एक प्लान बनाता है। वो क्या करता है, स्कल्पचर में एक्सपर्ट रहता है, अपने जैसा एक डुप्लीकेट बनाता है उसके एक फॉर्म में, पीओपी के इसमें फॉर एग्जांपल, और एकदम डिक्टो बनाता है, कोई भेद नहीं हो सकता, और ऐसे 6-7 फॉर्म्स रख देता है बना के, और उसे पता रहता है कि किस समय यमराज आने वाला है उसको उठाने के लिए। तो वो क्या करता है, 6-7 फॉर्म लगा देता है, उसमें ये बीच में भी खड़ा हो जाता है सेम डिक्टो, और उसको लगता है कि मैं यमराज को चीट कर दूंगा, वो पहचानेगा नहीं किसको लेके आना है, किसी गलत को लेके चले जाएगा और मेरा काम खत्म। तो वैसे ही होता है, वहां पे खड़ा रहता है, यमराज आता है और यमराज आके चौक हो जाता है, भाई ये क्या है, ये फलाना फलाने को उठाना है, तो ये तो 7 जैसे लोग है, किसको उठाऊंगा मैं, ऐसे तो लिखा नहीं गया था, ये इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया था मुझे चित्रगुप्त ने कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर बुद्धि लगाता है कि ये जो है ये इंसान इंडियन है, ये बहुत बदमाश है, तो इसको इसके तरीके से इसको संभालना पड़ेगा। तो वो कहते हैं यमराज जी कि ये जो स्कल्पचर है इतने अच्छे नहीं है, इतने सुंदर नहीं है, कौन बनाया इसे, एक नंबर के बकवास क्रिएशन है। तो जब आप कुछ क्रिएट करते हो तो आप आसक्त भी हो जाते हो, कि पैशनेट रहता है, पैशनेट से ही क्रिएशन होता है। तो ये स्कल्पचर आसक्त था अपने डिजाइन से और उसको इतना गुस्सा आया कि इसने ऐसे कैसे मेरे बुराई किया, और आगे आके बोलता है ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो, इतना खराब है मैंने बनाया है, खराब नहीं एकदम अच्छा है, हाँ पकड़ लिया, चलो भी मेरे साथ में। तो चीट करने की कोशिश करता है मगर चीट नहीं हो पाता, कि यू कैन चीट डेथ, इट्स श्योर, कोई चीट नहीं कर सकता, कितना भी होशियार हो, कितना भी धनशाली हो, कैसा भी हो, शक्तिशाली हो, उसको डेथ का फेस करना ही पड़ेगा। सो अर्जुन ये समझ रहा था और कृष्ण को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम लड़ाई लड़ो या ना लड़ो, ये मरने वाले है। तो अर्जुन को क्या कहते हैं, तुम लड़ो, जो 33 वाले श्लोक में कहते हैं, लड़ो मेरा इंस्ट्रूमेंट की तरह, और ये तुम्हारा धर्म है, ड्यूटी, मेरा इंस्ट्रूमेंट बनना, कि जो भी होने वाला है सब मैंने डिसाइड कर चुका है, हो चुका है, मैंने प्लान कर चुका हूं, तुम लड़ो और इसका फायदा उठाओ, इसके ग्लोरिफिकेशन लो अपने लिए। और ये कृष्णा अर्जुन को समझाते हैं, क्योंकि कृष्णा कहते हैं अर्जुन को, सव्यसाची, सव्यसाची मतलब जो एक्सपर्ट है लड़ने में, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ से लड़ सकता है, और कहते कि तुम लड़ो विदाउट प्राइड के, ऐसा मत समझो कि तुम्हारे लड़ने से, तुम्हारे स्किल से ये सब होने वाला है, ये मरने वाले हैं, नहीं, पूर्वम एवा, ये पहले से डिसाइड हो चुका है मुझसे, इसे लोग मरने वाले हैं, तुम बस लड़ो अपना स्किल्स को यूटिलाइज करके, घबराओ मत, यही कहते हैं अर्जुन से। और अभी मेन आज का श्लोक 34वां, जहां पे कृष्णा कहते हैं अर्जुन को कि डरो मत, तुम्हारी विक्ट्री गारंटी है, क्योंकि अर्जुन को दूसरे अध्याय में हम देखते हैं अर्जुन को डाउट था कि हम लड़े इनसे कि हर जाए, वी शुड बी कॉन्क्वर्ड बाय देम और वी शुड कॉन्क्वर देम, 2.6 में ये श्लोक है कि हम उनको जीते कि उनसे जीता जाए, अर्जुन को डाउट रहता है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हमारी साइड कितनी कमजोर है, तो कृष्णा यहां पे कहते हैं जेतसी यू विल बी विजेता, आप जीतोगे, कोई डाउट नहीं है। और जो 26 वाले श्लोक में जो नाम लिखे रहते हैं तीन, कौन से, भीष्मा, द्रोणा और कर्णा, यहां पे एक और नाम आता है, किसका, जयद्रथ, क्यों, क्योंकि अर्जुन को उनका डर था, किसका, जयद्रथ का, कि कृष्ण पहले ही कह चुके तुम जीतो के बस लड़ो लड़ो लड़ो, 3-4 बार कह चुके हैं, ये श्लोक में वापस कहने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जयद्रथ को एक बूंद मिला था, एक क्या मिला था, वरदान मिला था, जयद्रथ एक असुर था, ठीक है, अब असुर लोग हमेशा शिव जी के पास जाते हैं कि भोले बाबा है, ऐसी इच्छा पूरी कर देते हैं, और उनको लगता है कि असुर लोग शिव जी को चीट कर देंगे, मगर शिव जी उनके भी होशियार रहते हैं, तो जो वरदान देते हैं उसमें हमेशा लूपोल छोड़ते हैं, जो जयद्रथ को वरदान मिला था कि ये कभी मरेगा नहीं, जो भी इसका सर काटेगा और सर अगर धरती पे गिर गया, जिसने जिसका ये कारण होगा, जो इसका कारण होगा उसकी, वो फूट जाएगा, वो मर जाएगा, जैसे मैंने उनको मारा जयद्रथ को, अगर मैंने उसको मारा उसका सर धरती पे गिर गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी मारने वाले की, मगर एक कंडीशन भी डाली, अगर ये सर जाके इसके पिता के हाथ में जाता है और पिता गलती से इसको गिरा देता है सर को, तो जयद्रथ मरेगा, तो बच नहीं पाएगा, तो जयद्रथ को लगता है मेरे पिता क्यों मेरे मुझसे लगाव करेगा, मेरा सर उनके हाथ में आएगा थोड़ी छोड़ेगा, वो तो उसको आलिंगन करेगा, तो ऐसा होता है। मगर कृष्णा फिर प्लान करते हैं जयद्रथ को मारने का, कैसे, संध्या का वेट करते हैं कि वही समय पर उसको मार सकते हैं, संध्या का वेट क्यों करते हैं, कि जयद्रथ के पिताजी एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण संध्या के टाइम में ऑफरिंग देते हैं सूर्यदेव को, नदी में जाके सूर्य पानी लेते हैं नदी का और अर्पण करते हैं, सूर्यदेव स्वाहा 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 स्वाहा, अर्जुन को पता चल गया कि ये टाइम है, उसी समय जयद्रथ पे एरो छोड़ता है, एरो सर काटता है, एरो सर को लेके जाता है, ये यहां पे स्वाहा स्वाहा करते रहते थे, वहीं पे हाथ में जयद्रथ का सर आ जाता है, गीला गीला लगता है, बोले पानी रहेगा, स्वाहा गिर जाता है, जयद्रथ मर जाता है, तो ये टाइमिंग रहता है मैच करने का। तो कहते हैं कि डरो मत, जयद्रथ का भी अंत होने वाला है, गारंटी देता हूं मैं, तो घबराओ मत, अभी क्या करो, चुपचाप लड़ो, अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस लड़ो, क्योंकि हर एक प्लान जो होता है संसार में कृष्णा की मर्जी से होता है, बिना कृष्णा की मर्जी से घास भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता, हमारा बॉडी देखो, हम भूख कंट्रोल कर सकते हैं, प्यास कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारे जो आउटलेट प्रोसेस है उसको भी रोक नहीं सकते हैं, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कि कोई तो कंट्रोल कर रहा है मगर हम मानने को तैयार नहीं है, हमको लगता है हम कंट्रोलर है, और ऐसे अहंकारी व्यक्ति को विमुद आत्मा, जो पागल लोग हैं उनको कहा गया कि जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कि हर चीज कृष्णा की मर्जी से होती है, और वही कृष्णा अर्जुन को समझाना चाह रहे थे कि तुम मेरे लिए लड़ो, कि तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा, मेरा प्लान काम करेगा, और इंडिपेंडेंटली एक्ट मत करो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, और ये हमारे लिए शिक्षा है। अर्जुन को तो पता था कैसे एक्ट करना है, मगर हमारे लिए था क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है इंडिपेंडेंटली एक्ट करने की, प्लान करने की। एक्ट तो हम करते नहीं, हम प्लान ही करते रहते हैं। जैसे एक स्टोरी था, एक पॉटर रहता है मटका बनाने वाला, वो मटका बनाता है, 3-4 मटका बना देता है और फिर सपने देखना चालू कर देता है लेट के। आज मेरे पास 4 मटके हैं, इसको बेचूंगा मैं, प्रॉफिट आएगा, 6 मटके बनाऊंगा, फिर मैं 6 मटके को बेचूंगा, प्रॉफिट आएगा, 10 मटके हो जाएंगे, 10 मटके को बेचूंगा, 20 मटके हो जाएंगे, 20 के 40, 40 के 50, बहुत सारा पैसा आएगा, मैं लखपति बन जाऊंगा। फिर लखपति बन जाऊंगा तो छोकरी चाहिए, फिर पैसे का क्या करूंगा? कि आदमी को अकेले को पैसा नहीं चाहिए, आदमी तो खुश है हवा पानी से, फिर कौन चाहिए? छोकरी चाहिए। ठीक है, फिर छोकरी लाऊंगा, वाइफ को ऐसा बोलूंगा ऐसा करो, मेरे लिए बनाओ, ऑर्डर दूंगा, और मेरा उसने अगर ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो ये इंसान ऐसा लेटा हुआ था तो ऐसा सपने में देखता है, ऐसे जोर से लात मारूंगा उसको ताकि लाइन पे आ जाएगी। और जैसे वो लात मारने की एक्शन करता है, जो 4 पॉट्स रहते हैं वो फूट जाते हैं, तो जिसपे पूरी वो प्लान कर रहा था अपना पूरा संसार, वही फूट जाता है। सो हम इमेजिन बहुत करते हैं मगर एग्जीक्यूशन कितना करते हैं? बस हम इमेजिन करते हैं, इसलिए हमको रास्कल कहा गया है कि हमारे प्लान हमेशा फेलियर होते हैं क्योंकि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लेते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए रहते हैं, और अल्टीमेटली वो फेलियर होते हैं क्योंकि ये हमको समझना चाहिए बुद्धि से, या देख भी सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है जिसमें इंद्रिया है, जिसको हम संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, भोग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हैं आत्मा। आत्मा को भोग करने की जरूरत नहीं है, आत्मा सेवा से ही खुश है, वही उसका भोग है। मगर अहंकार की वजह से हम सोचते हैं हम ये शरीर है और पूरी जिंदगी शरीर के लिए करते हैं, पूरा शरीर, शरीर आखिर में क्या हो जाता है? जला देते हैं तो राग बन जाता है, जानवर खाता है तो स्टूल बन जाता है, ये हमारा है शरीर। हम शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, हमारे शरीर के लिए हम कितना सारा धन जमा करते हैं, मेरा मेरा मेरा, क्या होता है हमारे जाने के बाद? कोई और उसके साथ भोग विलास करता है, हमारे साथ तो नहीं जाता। हम आए थे खाली, जाते हैं खाली, आए थे नंगे, जाते हैं नंगे, और फिर भी ये मेरा है, हम कुछ लेके नहीं जाते हैं। फिर जिनके लिए करते हैं, सगे संबंधी, शरीर से जो संबंधित है उनके लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, क्या होता है? हम उनको साथ में लेके जा सकते हैं, हम अपनी बीवी को साथ में लेके जा सकते हैं, बेटे को साथ में लेके जा सकते हैं? नहीं, वो देखते रहते हैं, रोते रहते हैं, और क्या होता है? कुछ नहीं होता, हम अकेले जाते हैं और शरीर को भी लेके नहीं जाते हैं, और पूरी जिंदगी वी वर्क लाइक अ डोंकी फॉर दिस टेम्पररी बॉडी। दैट्स वाई द प्लान फॉर दिस बॉडी इज कॉल्ड रास्कलडम। अब जो भी प्लान करोगे ये बॉडी से रिलेटेड में तो वो फेलियर है, कि हमारा हर एक एग्जिस्टेंस टेम्पररी है, यहां पे हमारा यूथ टेम्पररी है, कुछ दिनों का है, थोड़ी देर में बाल सफेद आएंगे, कितना भी कॉस्मेटिक्स लगाओ रियलिटी साथ में दिख जाता है, कितना भी अवॉइड करो मृत्यु आना ही है, आना है, अब अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो क्यों प्लान कर रहे हो इसके लिए? इसलिए इसको रास्कल प्लान कहा गया है, कि क्यों? ये लोगों को गोल नहीं पता लक्ष्य का, इनको लक्ष्य नहीं पता क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानना, भगवान के प्लान को जानना और उनके प्लान के हिसाब से काम करना। इसलिए प्रभुपाद जी यहां पे कहते हैं कि तुम प्लान मत करो, जितने भी बच जीव है आप लोग प्लान मत करो, आप भगवान के प्लान को फॉलो करो। अब आप कर नहीं पा रहे हो भगवान के प्लान को फॉलो, तो उनके भक्तों का प्लान को फॉलो करो, क्योंकि प्रभुपाद जी यही फोकस है ये पटपट में आज के श्लोक में, क्योंकि भगवान के प्लान में और उनके भक्त के प्लान में कोई अंतर नहीं है। हम रोज गाते हैं साक्षात हरित्वे न समस्त शास्त्र, जो गुरु है वो साक्षात रिप्रेजेंटेटिव है, कॉन्फिडेंशियल सर्विटर है, किसका? कृष्णा का। और जो भी वो चाहता है, जो प्लान करता है, वो कृष्णा की मर्जी के हिसाब से होता है, कोई अंतर नहीं है, और ये हमें करना है। और इसे ही कहते हैं कृष्णा की मर्जी, कहते हैं हम कृष्णा की मर्जी के बिना हम नहीं जान सकते हैं। तो क्या है ये मर्जी? ये है गुरु, गुरु है कृष्णा की मर्जी, कि बिना कृष्णा की मर्जी से हमको गुरु नहीं मिलता, और बिना गुरु की मर्जी से हमें कृष्णा नहीं मिल सकता, तो हमें मर्जी चाहिए। मगर हम क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली प्लान करते हैं, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या क्या नहीं करूंगा, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। मगर हमें करना पड़ेगा, क्यों? कहा गया है कि आप जब फेथ रहेगा आपके ऊपर, कृष्णा और गुरु के ऊपर, और उसके हिसाब से जियोगे, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, इतना जो स्ट्रगल कर रहे हैं, 12-12 घंटा काम करके, 14 घंटा काम करके, दुख लेके, अपने बीवी बच्चों से दूर रह के, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको फेथ है कि मैं ऐसा जो जीऊंगा जीवन, आखिर में मुझे खुशी मिलेगी। इसलिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं। कोई भी बेवकूफ जैसा संघर्ष नहीं करता, उसका फेथ है कि ये मेरा जो मटेरियल प्लान है उससे मैं खुश हो सकता हूं, इसलिए वो संघर्ष कर रहा है ना। कोई संघर्ष नहीं करता, मगर ये अज्ञान का फेथ है, विदाउट नॉलेज है। नॉलेज क्या है? क्योंकि आप मटेरियली कभी हैप्पी नहीं हो सकते। शौचालय मतलब टॉयलेट, ग्रंथालय मतलब बुक लाइब्रेरी, ग्रंथालय में कभी शौचालय नहीं हो सकता। वैसे ही ये संसार को कृष्णा कहते हैं, जिन्होंने इसका निर्माण किया है, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय में आप सुखालय की एक्सपेक्टेशन करोगे तो बेवकूफी है। तो क्यों संघर्ष कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कौन कृष्णा? नो कृष्णा, आई एम कृष्णा। तो मेरा अपना खुद का प्लान है, मैं क्यों फॉलो करूं? इसलिए हम एथियज्म फॉलो करते हैं, इज्म एथियज्म, क्योंकि हमको अपने हिसाब से चलना है। और कृष्णा बहुत सारे नियम कानून लेके आ रहा है, इनके भक्त लोग बहुत सारे नियम कानून लेके आ रहे हैं, हेड शेव करो, ये करो, वो करो, चार नियम फॉलो करो, जल्दी जगो। अरे कहां से जल्दी जगेंगे? 12 बजे तो हम सोते हैं, तो कहां से जगेंगे? जब आप जगते हो तब तो हम सोते हैं, मुश्किल जाता है जगना। वो नहीं फॉलो करना चाहते हैं, वो विम्जिकली एक्शन लेना चाहते हैं, ये है असुरी प्रवृत्ति। तो जितने भी संसार में भगवान के प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं वो है असुर। और हम भी अगर गुरु के उपदेश के हिसाब से, जो कि कृष्णा की मर्जी है, उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो अभी भी हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति है। भले भारी तौर से हमने अपना पहनावा बदल चुका है, मगर मेंटेलिटी से हम अभी भी असुरिक है। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब वी हैव टू बी कॉन्शियस, सतर्क रहना कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा भाव कैसा है कार्य करते वक्त, क्या मैं कार्य कर रहा हूं अनुशीलनम, क्या विपरीत कर रहा हूं, क्या मेरा कार्य मेरे गुरु को प्रसन्न करेगा, कृष्णा को प्रसन्न करेगा, कृष्ण क्या अनुशील है, क्या उसके विपरीत है। तो कृष्णा कॉन्शियस मतलब फर्स्ट वी हैव टू बी कॉन्शियस कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ये बहुत जरूरी है। और जो भी ये फेथफुली फॉलो करता है गुरु और कृष्णा के ऊपर फेथ रख के, उसको सब चीजें रिवील हो जाती है। भले वो बड़ा ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, इलिटरेट हो, फिर भी कहते हैं कि जितने भी ग्रंथ है, वेद है, सबका जो निचोड़ है उसको पता चल जाता है। कैसे? उपनिषद में कहा गया है, यस्सा देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्या एते कटिता ही अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना। कि जो ये महात आत्मा है, जो फेद रखता है गुरु कृष्ण पर, ये इसको महात आत्मा, महान आत्मा कहा गया है। ये साधारण आत्मा नहीं है, बहुत ही भाग्यशाली आत्मा है। जो फेद रखता है गुरु कृष्ण के ऊपर, ऐसे व्यक्ति को जितने भी ग्रंथ है हर एक का रिविलेशन होता है, प्रकाश शांति रिवील होता है उसके हृदय में। और इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है, यह है साउथ से। हमें सबको पता है एक महान आचार्य है श्रीला रामानुजाचार्य, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उन्होंने शंकराचार्य के फिलोसॉफी को डिफीट किया था। तो इतना आसान नहीं था, कि वो बहुत ही तर्कवादी थे, तो ये बहुत स्कॉलरली क्लास देते थे, कि बहुत शिष्य भी बहुत होशियार थे, हर कोई नहीं था, हर कोई होशियार नहीं था। तो जब भी क्लास देते थे तो हर एक जिनके जो स्कॉलरी शिष्य थे हमेशा आगे बैठते थे क्लास अटेंड करने के लिए। हाँ, हम सीखेंगे, हम ज्ञान डेवलप करेंगे और बड़े बड़े ज्ञानी बनेंगे, बड़े बड़े प्रीचर बनेंगे। और ये उनको उनको लगता है ये मेरी सेवा है गुरु के साथ में रहना। मगर एक शिष्य था जो क्लास में बैठ नहीं पाता था, क्योंकि वो अपने गुरु महाराज के रामानुजाचार्य के कपड़े धोता था और उसकी वही सेवा थी, उनकी सेवा में लगा रहता था। तो जब भी क्लास होता कभी बैठ नहीं पाता था। और ये लोगों को लगता था बाकी शिष्यों को, ये क्या है, अनपढ़ है, क्या समझता है इसको शास्त्र, कुछ समझता नहीं, बस धोबी वाला है ये, उनको ऐसा लगता था। एक बार रामानुजाचार्य क्लास दे रहे थे और कहे कि ये मेरा शिष्य है जो वहां पे मेरे कपड़े धो रहा है, उसको आज बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं क्लास नहीं दूंगा। स्कॉलरली शिष्य परेशान हो गया, बाबा आज क्लास नहीं, आज कैसे हमारा दिन वेस्ट चला गया। तो जाते हैं, ए बाबा धोबी चलो, गुरु महाराज बुला रहे हैं, आज कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मैं क्लास नहीं चालू करूंगा, तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो उसको जबरदस्ती लेके जाते हैं, वो आता है और फिर हमेशा क्या कहते हैं, आज का क्लास ये मेरा शिष्य देगा जो कि धोबी है, जो कि मेरे कपड़े धोता है। और सबको लगा इसको क्या आता है बाबा, ये तो अनपढ़ है, ये क्या क्लास देगा। तो ठीक है, वो बैठता है और प्रेयर करता है, ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीयद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. फिर बोलना शुरू करता है, और जब वो बोलना शुरू करता है, वो जो इतने दिनों से जो क्लास हो रहा था ना, वो सब बोल देता है और सब शास्त्र से बोलता है. ऐसे ऐसे श्लोक उच्चारण करता है जो इस शिष्यों को भी नहीं पता रहता है. होशियार शिष्यों को सब रिवील हो जाता है. ददामि बुद्धि योगम तम, सब अंदर से आता है. उनको कृष्ण बुद्धि देते हैं परमात्मा के रूप में और सब रिवील कर देते हैं. क्योंकि जो हम प्रेयर करते हैं, ओम अज्ञान अतिमिर अंधस्था, हम प्रेयर करते हैं कि हम तो इग्नोरेंस में है बाबा, आपकी कृपा से हमें रोशनी मिल रही है, प्रकाश आ रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ पता है, ये मेरा इग्नोरेंस है. व्हेन आई थिंक आई नो मीन्स आई डोंट नो, दैट्स द इशू. वी से आई नो बट व्हाट यू नो, हमें कितना पता चलेगा? कृष्णा अनलिमिटेड है, क्या पता है हमें? कुछ नहीं पता है. सो हम प्रे करते हैं, हम प्रे करते हैं मुकम करुति वाचालम, कि मैं तो इन एलिजिबल हूं बोलने के लिए भी, पंगुम लंगाए थे गिरी, मैं चलने के लिए भी इन एलिजिबल हूं, मगर आपकी कृपा से, गुरु की कृपा से मैं बोल पा रहा हूं, गा पा रहा हूं, मैं बड़े बड़े पहाड़ पार कर पा रहा हूं. हम प्रे करते हैं कि हम इन एलिजिबल है, और फेथ रखते हैं गुरु के ऊपर कि आपके कृपा से मैं अभी बोल सकता हूं. ये सुपरफिशियल प्रेयर नहीं है, दिस इज प्रेयर टू बी मेडिटेट अपॉन. वो प्रे करते हैं और पूरा रिवल्यूशन कर देते हैं, हर एक चीज शास्त्र के हिसाब से बोलते हैं, कुछ भी डिबेट नहीं होते हैं. और रियल स्टोरी है, ये रियल फैक्ट है, ये स्टोरी नहीं है. तो जिसमें भी गुरु और कृष्णा पे फेथ है, लाइफ का सक्सेस हो गया. कि जितना हमारा फेथ रहेगा उतना हमारा समर्पण बढ़ेगा. अभी हमें भी पता है हमारा कितना समर्पण है, हमने बाहर से समर्पण करते हैं मगर पीछे बहुत सारी चीजें छुपा के रखी है. और प्रॉब्लम क्या है, कृष्णा कृष्णा को वही चाहिए. कृष्णा वही कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य, सब समर्पण करना पड़ेगा बाबा, और कोई तरीका नहीं है. तो जो भी पीछे छुपा के रखा है या रोक रहे हो, वो देना पड़ेगा, हाथ पूरा खुला करना पड़ेगा. जैसे द्रौपदी, जैसा द्रौपदी जब असहारा थी, एक हाथ से पुकार रही थी, हे गोविंद हे गोविंद, कृष्णा कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे थे. जब द्रौपदी पूर्ण समर्पित हो गए, हे गोविंद अब कोई चारा नहीं है, अब जो होना है होने दो, अब तुम्हारे ऊपर है, तब कृष्णा एक्शन लेते हैं. तो कृष्णा का ये कि अगर कृष्णा चाहिए तो सर्वधर्म परित्यज्य, और कोई तरीका नहीं है. हाफ सरेंडर से कुछ नहीं होगा, हाफ सरेंडर से ढोंगी मिल सकता है, कृष्णा नहीं मिलेगा. तो ये समर्पण एक दिन की बात नहीं है. समर्पण आता है फेथ से, फेथ आता है ज्ञान से, और ज्ञान आएगा सुनने से. इसलिए हमारी जो भक्ति में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है श्रवणम, कि श्रवण करने से ही हमें नॉलेज मिलेगा, हमें फेथ मिलेगा, हमारा समर्पण बढ़ेगा. इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव व्हाइल लिसनिंग. सो अभी हाउ, कहां पे चले गए हम? या लास्ट पॉइंट. सो अब जो व्यक्ति ये फेथ रखता है गुरु और कृष्णा के ऊपर, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो विक्टोरियस हो गया जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए. और उसको भी जो भी संघर्ष करना पड़ता है ये संसार में, ये भौतिक उसका एग्जिस्टेंस है, उसको वो पार कर लेगा. हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं? किससे स्ट्रगल कर रहे हैं? मनस्तस्तानि इंद्रियानि, मन से, इंद्रियों से. क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि वो उत्तेजित है, एजिटेटेड है, क्या क्या नहीं डिमांड करते हैं. और प्रॉब्लम क्या है, शांति नहीं रहते. आंखें बोलती है उसको देखो, एक मिनट बाद बोलती है उसको देखो. मॉल में जाते तो सब जगह आंखें घूमती रहती है, एक जगह भी रहती नहीं है. नाक क्या क्या नहीं सूंघना चाहता है, जीवा क्या क्या नहीं खाना चाहता है, संतुष्ट नहीं रहता. खिलाओ जितना भी फिर भी शांत रहता है. स्किन स्पर्श करना चाहता है, स्पर्श के लिए कितना संघर्ष करता है. कान नॉनसेंस सुनना चाहता है, जीव नॉनसेंस बोलना चाहता है. तो ये एजिटेशन है. तो जब भी हम एजिटेटेड रहते हैं या अनइजी रहते हैं, अगर ये आसन है इसमें मैं काटे रख दूं तो क्या होगा, मैं ऐसे ऐसे हिलूंगा, बार बार अनइजी फील करूंगा, क्योंकि मैं राइटली अच्छी जगह पे नहीं बैठा हूं, मैं राइट पोजीशन में नहीं बैठा हूं. तो सिमिलरली हमारा मन, हमारी इंद्रिया अगर राइटली सिचुएटेड नहीं है तो वो एजिटेटेड रहेंगी, वो हमेशा चंचल रहेगी. तो उनको सिचुएट करना है, और वही गुरु हेल्प करते हैं. गुरु हमें जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, ताकि हमारी जो ओरिजिनल सिचुएशन है ओरिजिनल जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसमें सिचुएट करने की कोशिश करते हैं। और सिचुएशन क्या है, मैं हूं नित्य हरे कृष्ण दास, मैं नित्य दास हूं कृष्ण का, उनके भक्तों का। और गुरु ऐसे उपदेश देते हैं जिससे हम कृष्ण की सेवा में लगे और उनकी भक्तों की सेवा में लगे, और कोई इच्छा नहीं है गुरु की। गुरु यही इच्छा करता है अपने शिष्यों के लिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कि ये जो जीव है, बस जीव जो आंदोलन करके कृष्णा को छोड़ के यहां पे आया है और गलत सिचुएशन में है, इसलिए उत्तेजित है, ये जन्म नहीं, कितने साले जन्मों से है और कभी संतुष्ट नहीं रह पा रहा है, ये सिचुएट हो जाए किसमें, भगवान की भक्ति में। और यही कृष्णा चाहते, यही कृष्णा चाहते हैं और यही भगवान के भक्त चाहते हैं, इसलिए गुरु हमारे वेल विशर है। और इसलिए हमारा उनका संबंध कोई मामूली संबंध नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, एक घनिष्ठ संबंध है जो ये संसार से लेके आध्यात्मिक संसार तक रहेगा। हमारा जो संबंध है जिसके लिए हम इतना संघर्ष करते हैं, लोग चिल्लाते हैं क्यों बाबा जी बन गए, क्यों हो गया, काय का संबंध है, ये से कुछ सालों का संबंध है, और डिमांड करते हैं हमारे लिए पूरा जिंदगी दे दो, बेवकूफी है, दे दो। आप जब चले जाओगे मेरा क्या होगा, आप आओगे हमें बचाने के लिए, आप तो किसी और के माता पिता बन जाओगे, तो क्यों संघर्ष करिए आपके लिए। अगर आप हमें कृष्ण के पास भेजते हो तो आपके लिए संघर्ष करेंगे। आप क्या कह रहे हो, कृष्ण की भक्ति करो, आप तो कह रहे हो मेरी भक्ति करो, हमें पालो पोसो, हमारा ये करो, डिमांड्स फुलफिल करो, बड़ा घर लो, बड़ा गाड़ी लो, बड़ी बीवी लाओ, ये लाओ वो लाओ, हम क्यों करें, ये तो हमसे कृष्णा से दूर लेके जा रहा है। पहले से मेरी सेंसेज एजिटेटेड है और ऐसे कार्यों में लगा रहे हो जहां पे डबल एजिटेट हो जाएंगे, तो ये तो बेवकूफी है, ये तो आत्मा है, सुसाइड है। अभी हम सुसाइड से खुद को बचा रहे हैं और कहते हैं तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो इरेस्पॉन्सिबल हो, ये है हिपोक्रेसी कलयुग का। भक्ति करोगे कृष्णा की भक्ति, लोग मना करेंगे, और माया की भक्ति करोगे तो लोग सपोर्ट करेंगे। सो गुरु हमें कृष्णा की भक्ति में लगाते हैं, हमें कृष्णा से दूर नहीं करते हैं, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, उनका शरण लेके कृष्णा की भक्ति में लगे रहना। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। अभी भगवान का पट खुल रहा है, दर्शन देने वाले हैं, तो उनका स्वागत करेंगे उनका नाम लेके, तो सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय श्री श्री राधाराज बिहारी जी के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण और हनुमान जी के, श्री श्री गौर निताय की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल, हरे कृष्णा।
वंदेहं श्री गुरु।